que preste clase. Do you like any sources? ओम शांति. ये किसने कहा? हम स्वात्मा ने कहा, हम शरीर ने तो नहीं कहा, क्योंकि मुझे आत्मा का ही स्वधर्म शांत है. तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा का जो स्वधर्म शांत है वो कहाँ की रहने वाली है? शांति धाम की रहने वाली है. और शांति धाम से यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आई है पार्ट बजाने के लिए. अभी 84 का चक्कर लगा करके पूरा किया, अभी बाप ने समझाया है, हे बच्चे, हे आत्माओं, तुमने जो 84 का चक्र का पार्ट बजाया वो तुम नहीं जानते हो. मैं बताता हूँ कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, फिर तीसरा चौथा बदलता जाता है. तुमने 84 बार शरीर धारण करके पार्ट बजाया है. किसने किसने पार्ट बजाया है 84 बार? आत्मा ने. तो क्या कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती हैं वो 84 का पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है? वो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाली तो है ही नहीं. तुम बच्चे जो 84 का पार्ट बजाते हो और आखिरी जन्म में जब बाप आते हैं तो तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो, क्योंकि तुमने ही 84 का पार्ट बजाया है. फिर वही पार्ट कल्प कल्प लेते रहेंगे. जो भी 84 जन्म लिए हैं वो ही लेते रहेंगे. और जो कुछ भी जैसा भी 84 जन्म में पार्ट बजाया है वो बजाते बजाते अभी आकर के अंत हुआ है. बाप को तुम बच्चों ने निमंत्रण दे करके बुलाया है. जो आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं होते उन्होंने निमंत्रण देकर नहीं बुलाया है. क्यों? क्योंकि पतित पावन सीताराम कह करके तुम बच्चे ही बुलाते हो. जो बुलाते हैं वो पति से पावन भी बनते हैं, जो नहीं बुलाते हैं वो पतित से पावन भी नहीं बनते हैं. तुमने कहा बाबा आकर के हमको सतो प्रधान पतित से पावन बनाओ, और ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है सो समझाओ. बस. और कोई बात किसी ने कही हो तो बताओ। इसी बात के लिए ऋषियों मुनियों के लिए बोला जाता है कि कोई भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी तुम बच्चों ने तो बाप को जाना है और षष्ठी चक्र को भी जाना है। बाप का फर्ज है अपना परिचय देना और 84 के चक्र का नॉलेज देना। एक बाप को ही कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। क्यों? एक सुप्रीम बाप को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। और जब इस षष्ठी पर आता है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो पूरे 84 के चक्र में आता है। तो पूरा ज्ञान जरूर एक में ही होगा। जो मेरे में ज्ञान है वो तुम बच्चों को देता हूं। तुम बच्चों की आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बनती है नंबर वार। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा का यहाँ क्या पार्ट है। बाप ही आकर के ये सभी नॉलेज देते हैं। वो ऋषि मुनि आदि तो कहते हम रचयिता रचना को नहीं जानते। अगर रचयिता को ही नहीं जानते हैं तो आस्था किस पर रखेंगे? वो या नास्तिक हैं। एक बाप ही है, उनका ही फर्ज है जो आकर के बच्चों को समझाते हैं। और रचयिता को जानना तो सेकंड का काम है। फिर डिटेल में समझाने में समय लग जाता है। निश्चय बुद्धि बना और बाप का बच्चा बना। अगर सारा ज्ञान सेकंड में मिल जाए तो तुम याद की यात्रा में कच्चे रह जाएंगे। इसलिए समझाने में समय लग जाता है। मनन चिंतन मंथन करके जुगाली करने में, ज्ञान को अपना बनाने में टाइम लग जाता है। इसलिए पढ़ाई वृद्धि को पाई है। बाप फिर भी डिटेल में बैठ समझाते हैं। ये षष्ठी चक्र कैसे फिरता है? याद की यात्रा में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस याद से ही तुम पावन बनते हो। जो एवर प्योर है वो ही तुमको पावन बनाते हैं। और पावन बनने से ही तुम उड़ जावेंगे। तुमने बुलाया ही है कि आकर के हमको पावन बनाओ। और षष्ठी चक्र का राज समझाओ। षष्ठी चक्र का राज जो समझाते हैं वो भी पावन बनाने के लिए साधन है। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानती, फिर भी तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है और वापस अपने घर जाना ही है तो पवित्र तो जरूर बनना पड़े। अपवित्र आत्माएं उड़ ही नहीं सकती, क्यों क्यों नहीं उड़ सकती? पवित्र वो जिनमें देह का देह भान का नाम निशान न रहे। देह तो पांच तत्वों की बनी हुई है, पांच तत्वों से भारी हो जाते हैं। देह का भान निकल जाए तो आत्मा हल्की हो जाती है। इस समय माया ने सभी का सर पर काट दिया है। ज्ञान योग के पंख कटे हुए हैं, तो अपवित्र बने हुए हैं। फिर ऊपर उड़ नहीं सकते, इसलिए तुमने बाप को बुलाया है तो बाप भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो। और ये आत्मा समझने की बात तो बिल्कुल पक्की कर दो। अमृत वेले उठते उठते पहला काम यही करो, अच्छी तरह से कूटना है मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, क्योंकि यही बात तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और आत्मा समझने से ही बाप जरूर याद आवेगा। क्योंकि आत्माओं का बाप सिर्फ आत्मा है और सदैव आत्मा है। उनको कहा ही जाता है सदाशिव, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है और वो सदैव ज्योति बिंदु है। बल पतित दुनिया में आता हूँ, पतित से पतित तन में आता हूँ, फिर भी मेरे को संग का रंग नहीं लगता पतित पने का। तो मेरे को याद करेंगे तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अपन को निश्चय करने से कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, आत्माओं का बाप जरूर याद आवेगा। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आत्मा समझने से ही शरीर का बंध टूटेगा। तो पहली पहली बात बाप रियलाइज कराते हैं। कौन सी बात है? मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। उसे रियलाइज करना है कि कैसे कैसे कौन कौन से देश विदेश में देश में और कौन से नाम रूप से मैंने ये पाठ बजाए हैं। आत्मा पाठधारी है तो पाठधारी को अपने पाठ का पता होना चाहिए, परंतु पहले अपन को आत्मा पक्का करना पड़े। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा अविनाशी हो।
अच्छा,
और आत्मा अविनाशी नहीं है? है या नहीं है? है। उनके पार्ट का विनाश नहीं होता है? अलाउंड पार्ट बजाती है? नहीं बजाती। तो उनके पार्ट का विनाश होता है और तुम्हारे पार्ट का विनाश नहीं होता है। तुम ऑलराउंड 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाले हो। ये शरीर रूपी ऑर्गन्स तो विनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है और आत्मा ही पतित बनी है। सोने में खाद पड़ गई है तो साफ बात है, बाकी शारीरिक कोई बीमारी आदि होती है तो जाओ उस सर्जन के पास। इसमें बाबा क्या करेगा? शरीर की बीमारी के लिए बाबा जिम्मेवार नहीं है। क्यों? क्यों जिम्मेवार नहीं है? हैं?
पूरे जन्म के साथ।
हाँ, क्योंकि पूर्व में जो जन्म लिए हैं, शरीर को धारण करके देह भान में आकर के जो विकर्म किए हैं, वो पाप कर्म तो तुमको ही भोगने पड़ेंगे। कोई में अपवित्र सोल आती है तो जाओ उन सोल निकालने वालों के पास। इसमें मैं क्या करूंगा? मेरा ये कोई धंधा नहीं है। ये तुम्हारे से जिन आत्माओं का हिसाब किताब है उन आत्माओं को भगाता रहूं। हिसाब किताब जोड़ा किसने? मैंने जोड़ा क्या? मैंने कहा इन हत्या करने वाले सुइसाइड करने वाली आत्माओं के साथ तुम संकरंग करके हिसाब किताब जोड़ो। तुमने खुद ही जोड़ा है तो खुद ही प्रयास करो उनके संग के रंग से निकलने का। बाकी साफ बात बताता हूं कि वो आत्माएं तो देहभान में रहने वाली है, इसलिए सूक्ष्म देहभान उनका रह जाता है। शरीर स्थूल छूट जाता है और तुम तो पूरे 84 जन्म लेने वाली हो। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का देहभान भी पूरा खलास हो जाता है। बाकी जो पूर्व जन्मों में हिसाब किताब जोड़ा है वो तो पूरा करना पड़ेगा। हमारा तो धंधा है सिर्फ पतित आत्मा को पावन बनाने का। सो भी एक बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बनेगा। बाकी अमुक सोल आती है ये सब धंधा तो 63 जन्मों से चला आया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बीमार पड़े और वो समझे कि बाबा तो भगवान है, हमको कोई दवाई देंगे तो हम बीमारी से छूट जाएंगे, नहीं, बाबा कहते हैं मेरा ये काम नहीं है। भला ड्रामा अनुसार कब कुछ न कुछ बता देता हूं, वो भी सिर्फ खुश करने के लिए। परंतु मेरा कोई ये धंधा नहीं है, मुझे बुलाया ही है आकर के पति से पावन बनाओ, तो मैं आया हुआ हूं। अभी कहता हूं मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे, और तो कोई काम के लिए मैं नहीं आया हूं। बीमारी आदि के लिए तो डॉक्टर आदि बैठे हुए हैं और भूत निकालने वाले भी ढेर बैठे हैं। मैं तो आया ही हुआ हूं नई बात बताने के लिए, मुझे बुलाया है कि आकर के पावन बनाओ तो हम शांति धाम सुख धाम जावे। और इन दुखों से छूट जावे। बाकी ये जो प्रवेशता आदि होती है, बीमारी आदि होती है, ये तो तुम्हारे अपने ही कर्मों का भोग है, जो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। कोई को दुख दिया है तो बदला लेने के लिए आते हैं, कौन है जो सोल वगैरह आती है वो किस लिए आती है? पूर्व जन्मों का अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आती है, इसमें बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। ये पुरानी रस्म चली आ रही है भक्ति मार्ग की। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा सर्वशक्तिमान है तो वो क्या नहीं कर सकता है, बीमारी को भी खत्म कर सकता है, नहीं, ऐसे ख्यालात कब कोई न रखे। मैं अल्पकाल के लिए प्राप्ति कराने आता हूं या सदाकाल की प्राप्ति कराने आता हूं, तुमने जिस काम के लिए बुलाया है मैं तो वो ही काम जानता हूं, दूसरे धंधे मैं नहीं जानता हूं, ये जानता होगा। तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा हमारी बीमारी को आज ठीक कर दो, शिव बाबा ऐसी बातें सुनते ही नहीं, कोई सुनाता है तो सुनते नहीं है, है? सुनते हुए नहीं सुनते, साफ कहते हैं ये तो तुम्हारा कर्म भोग है। ये कर्म भोग काटना कोई बाबा का काम नहीं है। कोई कोई आस रखते हैं बाबा के ऊपर कि बाबा भगवान है तो क्या नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं मैं अपना काम करने आया हूं और तो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा पार्ट अलग है, मैं सिर्फ तुमको पावन बनाकर षष्ठ चक्र का राज सुना करके चक्रवर्ती राजा बनाने का रास्ता बताता हूँ। रोजो लाई और सत्यवाणी का दूसरा पेज, बाकी तो और सभी बातें भूल जाओ। इन सभी बातों में जाना ये बाबा का काम नहीं है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और मुझे जितना याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूं। याद करना माना प्यार करता हूं। याद माने क्या, किसी की याद क्यों आती है? उससे लगाव होता है, प्यार होता है तो याद आती है। रावण को कोई याद करता है क्या? वो तो रुलाने वाले का नाम रावण है, वो थोड़ा याद आता है। तो ये अनन्य बच्चे हैं जो ईश्वरीय सर्विस करके आते हैं, उनको मैं आफरीन देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे बहुतों का कल्याण करते हैं। ये आफरीन है, शाबाश बच्चे, प्यार आता है ना। कोई बच्चा बाप की दुकान संभालता है और बच्चे निठल्ले बैठे रहते हैं, तो बाप का प्यार किसके ऊपर जावेगा? जो दुकान संभालेगा उसके ऊपर प्यार जावेगा? तो बाप फिर भी समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपन को आत्मा भूलने से ही फिर बाप को भूल जाते हो, फिर देह बहना जाता है। तो पहले पहले तो यही निश्चय करो कि हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है, है? हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है। जो बोलने वाला है वो सामने नहीं बैठा है, है? ये निश्चय कर, या कब की वाणी है? 68 की वाणी है, ब्रह्मा के तन में बोली है। तो ऐसे क्यों बोला कि पहले पहले ये निश्चय करो कि हम आत्मा हैं और वो हमारा बाप है। अरे बाप तो सामने बैठा है ना, फिर वो हमारा बाप दूर क्यों कर दिया? क्योंकि जो सामने बैठा है वो तो जब अंत मते सो आई गते हो गई, आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं रह सका, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, सूक्ष्म देह बहन आ गया। मैं जब आता हूँ और बाप के रूप में आता हूँ, तो जिस तन में मुकर रथ में आता हूँ उसको आप समान बना करके जाता हूँ। इसलिए बोला कि वो हमारा बाप है, ये हमारा बाप नहीं है। कौन? ब्रह्मा। और बाप की पहचान बताई कि बाप तो सर्व का सदगति दाता है। क्या सर्व का बाप है या कोई लिमिटेड का बाप है? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है, क्राइस्ट है तो क्रिश्चियंस का बाप है, बुद्ध बौद्धियों का बाप है, सबका बाप तो नहीं है। और मैं तो सबका बाप हूँ। तो सर्व की सदगति करता हूँ। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको देता हूँ। तो पहले पहले तुम आत्मा को भूल जाते हो तो माया के तूफान आते हैं। माया के तूफान आने का कारण क्या बताया है? आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, देह भान में आते हैं तो माया के तूफान आते हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है और तुम्हारा तो अहम ऑब्जेक्ट ही है विश्व का मालिक बनना। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। परंतु ये भी जानते हो कि जो तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का, वो लक्ष्मी नारायण भी सदैव तो इकट्ठे नहीं रहते हैं। रहते हैं क्या है? नहीं, सदैव तो किसका भी राज्य नहीं चल सकता। लिमिट है 21 जन्मों की, 21 पीढ़ी। और 21 पीढ़ी की मैं गारंटी देता हूं। ये तो जानते हो, वहां आयु बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? यहां आयु कम क्यों हो जाती है? नहीं, यहाँ आयु कम इसलिए हो जाती है कि हम देह भान में रहते हैं। जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है उसमें नहीं रहते। और वहाँ आयु लंबी क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है आत्मा की ज्योति बिंदु, उस स्वरूप की याद में रहते हैं। तो वहाँ पवित्र होने के कारण हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहती है। काया निरोगी हो जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी होते हैं। और ये भी जानते हो कि ये चक्र 5000 वर्ष का है। इन 5000 वर्षों में तुम 84 जन्म लेते हो। वे लोग 84 जन्म नहीं लेते हैं। कौन? जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, तुम 84 जन्म लेते हो। तो ये बात पक्की कर देनी चाहिए कि हम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले बाप के बच्चे पक्की आत्मा है। हर 5000 वर्ष के बाद हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हैं। हर एक जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है। क्यों? सत्य को त्रेता में देवान फिर आत्मा की शक्ति क्षीण होती है कि नहीं? वहाँ भी और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो सतयुग में उतरती हैं या नहीं उतरती है? है? उतरती हैं। कम जन्म लेने वाली ढेर की ढेर आत्माएं उतरती हैं। उनके संग के रंग में आने से दो कलाएं कम हो जाती हैं। तो हरेक जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा कमती होता जाता है। ये शरीर भी ऐसे ही बूढ़ा बनता है। सच को तेता में तो बुढ़ापा होता ही नहीं। देहभान आता है तो बुढ़ापा भी होता है। इनको कहा जाता है जर्जरी भूत अवस्था। चैतन्य आत्मा की स्मृति खत्म हो जाती है। सतयुग में जर्जरी भूत अवस्था ये अक्षर काम में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो चैतन्य आत्मा की स्मृति रहती है। तो यहां ही समझाया जाता है कि जर्जरी भूत अवस्था क्या होती है। यहां बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होते होते एकदम बेहाल हो जाते हैं। इंद्रियों में कोई भी शक्ति नहीं रहती। फिर समझते हैं कहां ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। ये नहीं समझते हैं ये हमारा ही कर्म भोग है। उस कर्म भोग का तो हिसाब भोगना ही पड़ेगा। बाकी सतयुग में तो तुम्हारा कर्म विकर्म बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहां देहभान होता ही नहीं है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म क्या है? श्रीमत के अनुकूल जो भी कर्म किए जाते हैं देहभान में रहकर भी, वो कर्म सत्कर्म होते हैं या विकर्म होते हैं? सत्कर्म होते हैं। और याद में रहकर के जो कर्म किए जाते हैं, पक्की याद में रहकर के जो कर्म किए जाएंगे वो अकर्म बन जाते हैं। जैसे सत्य को त्रेता में आत्म की स्थिति में रहते हैं तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। और विकर्म कब बनते हैं? देहभान में रह करके जब हम विपरीत कर्म करते हैं श्रीमत के तो पाप कर्म बन जाते हैं। वहां तुम जो कर्म करते हो वो अकर्म हो जाता है। यहां भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। कैसी है? क्या प्रैक्टिस करनी है? कि ऐसी गहरी याद में रहे जिसमें देहभान का नाम निशान भी न हो। भी देह और देह की इंद्रियों का भान ही नहीं होगा तो पाप कर्म बनेगा ही नहीं। वहां विकर्म क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां रावण का राज्य नहीं होता है। भले रावण ही धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो होती हैं, होती है या नहीं? कम कला वाली आत्माएं, कमजोर आत्माएं सत्य को त्रेता में परमधाम से उतरती है या नहीं? हैं? उतरती हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? हैं?
संस्कार इमर्ज हो जाते
हैं। वो आत्माएं उतरती तो हैं और ढेर की ढेर संख्या में उतरती हैं, परंतु जो उतरने वाली आत्माएं हैं वो 84 जन्म लेने वाली नहीं है। जब टाइम आता है द्वापर युग का, द्वैतवादी युग, तो इतनी कमजोर पड़ जाती हैं कि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। फट से रावण के चंबे में आ जाती है। जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो द्वापर युग के पहले जन्म में या आदि के जन्मों में द्वापर के आदि में रावण के चंबे में आवेंगे क्या? नहीं आवेंगे, क्योंकि पावरफुल आत्मा बनती है बाप की याद से। तो सतयुग में तुम विकर्माजीत होते हो, फिर द्वापर युग से विकर्मी बनते हो। विपरीत कर्म कब होते हैं? है? जब रावण राज्य में हम रावण के प्रभाव में आ जाते हैं तब विपरीत कर्म होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो नाम ही पड़ा है विकर्मी संबत, विकर्माजीत संबत और विकर्मी संबत। द्वापर युग से विकर्मी बनते हो, कारण क्या हुआ? विकर्मी बनने का कारण क्या हुआ है? क्योंकि द्वैतवादी युग शुरू हो गया। सत्युग त्रेता में अद्वैत एक का राज्य था। किसका? सत्युग त्रेता में जो राज्य चलता है वो किसका राज्य था? राम राज्य था। और द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म आ जाते हैं, द्वैतवादी राजाएं आ जाते हैं, द्वैतवादी राज्य चलता है, अनेक मत हो जाते हैं, अनेक कुल हो जाते हैं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं। फिर विकर्मी संबत कहा जाता है। भारतवासियों को इन बातों का पता ही नहीं रहता है। कि विकर्मी संबत कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, तो देखो कितना बड़ा धक्का लग जाता है। ये टपना आदि जो भी बनाते हैं ये सभी भक्ति मार्ग है। वहां सतयुग त्रेता में कोई ज्योतिषी आदि नहीं होते हैं। रावण द्वारा तुमको आधा कल्प का श्राप मिलता है, यहां तुमको वर मिलता है। रावण श्राप देता है और राम तुमको वर देते हैं। तो ये राम रावण का खेल बना हुआ है, परंतु राम त्रेता वाला समझ लिया है। क्या त्रेता में रावण होता है? वहां रावण तो होता ही नहीं। तो राम रावण का युद्ध है या राम रावण का खेल काय का? कहां की बात हुई? द्वापर युग से रावण आता है और राम और राम संप्रदाय की 84 जन्म लेने वाली आत्माएं उन रावण संप्रदायों से टक्कर लेती रहती है। बाकी त्रेता वाले राम की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं ये गीता भी झूठी, तो भागवत और महाभारत भी झूठा हो जाता है। अभी तुमको कहते हैं शास्त्र पढ़ते हो, पूछते हैं तुम शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्रों को मानते हो? बाबा ने समझाया है, तुम बोलो कि हमने जितने शास्त्र पढ़े हैं और किसी ने पढ़े ही नहीं होंगे। જન્મ જન્માંતર હમને શાસ્ત્ર પડે, પરંતુ અભી હમને સમજ લિયા હૈ કે અનેક મનુષ્ય ગુરુઓ દ્વારા લિખે હુએ શાસ્ત્રો સે દુનિયા કી સદગતિ નહીં હો સકતી. સદગતિ તો સિર્ફ જ્ઞાન સે હોતી હૈ, ઓર જ્ઞાનદાતા સિર્ફ એક હૈ, બાકી તો સભી અજ્ઞાન સુનાતે હૈ, બાકી સબ ભક્તિ માર્ગ હૈ. ये शास्त्र भी भक्ति मार्ग के हैं, जिनसे 2500 वर्ष से मनुष्य की मेंटेलिटी की दुर्गति होती आई है. तो अभी तो हम सदगति की तरफ जाते हैं, अभी हम दुर्गति की तरफ जाने वाले नहीं है. मनुष्य मत से होती है दुर्गति, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की मत से होती है सदगति. ये स्लोगन तो घर घर में टांग दो. क्या? श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति. बाप कहते हैं अभी मन मना भव हो जाओ. मेरे मन में समा जाओ. बाप को मन होता है? अरे शिव ज्योति बिंदु बाप जो सुप्रीम सोल है, उसको मनुआ है नहीं है? है त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है कि नहीं है? त्रिमूर्ति शिव तो कहा जाता है. तो उनमें जो सबसे नीची वाली मूर्ति है वो मनुआ है या नहीं है? छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? है मनुआ. तो ब्रह्मा रूपी मन है जो पहली मूर्ति तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है. ये मन रूपी घोड़ा भी कहा जाता है, परंतु ये मेरा मन नहीं है. शिव को मन होता है क्या? शिव सदैव अमन है या मन वाला है? वो तो अमन चयन करने वाला है. जो खुद ही अमन चयन करने वाला है, अमन चयन की दुनिया बनाने वाला है, वो मन वाला कैसे होगा? वो तो सिखाता है कि मन को दमन कैसे किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए. तो फिर किसको मन होता है? है जिस प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, वो प्रजापिता में मनन चिंतन करने वाली मनन शक्ति भी है. वो उसकी रचना है पहली पहली. कौन है पहली रचना? जो नारायण है विश्व का मालिक, उसकी पहली पावरफुल रचना कौन है? है ब्रह्म. कृष्ण के रूप में जन्म लेता है पहले पत्ते के रूप में, तो रचना हुई ना. तो मन मना भव, मेरे मन में समा जा. जब मेरे कहा तो कोई दूसरा है या नहीं है? कि एक सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ही है, है? मैं और मेरा, ये दो बातें हैं या एक है? दो चीजें हैं. मैं जो सदा शिव है, और मेरा जिस मुकर्रर रथधारी में मैं प्रवेश करता हूँ वो मेरा बच्चा है। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव या त्रिमूर्ति ब्रह्मा, फिर कहते हैं देव देव महादेव, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ है? शंकर बड़ा बच्चा हुआ। कोई भी कंपनी बनाते हैं तो एंड सन्स लिखते हैं ना, ये भी कंपनी है, ये कंपनी बने बगैर शिव बाप इस सृष्टि पर कोई काम नहीं करते हैं। ये मुकर्रर रथ की कंपनी है, तो वो मन वाला है जिसमें प्रवेश करते हैं वो सदैव अमन नहीं होता, लेकिन मैं तो सदैव अमन हूँ। तो कहता हूँ मन मना भव, मेरे मन में समा जा, ये नहीं कहा मेरे में समा जा। मेरे में समा जाने का मतलब मेरी बिंदी में समा जा, और बिंदी में समाना होता है क्या? वो तो हो ही नहीं सकता। तो बताते हैं और जो भी देह के संबंध धर्म हैं उन सभी धर्मों को छोड़ दो, एक ही बात पक्की कर दो, इस समय इस दुनिया में देह के बंधन हैं। मैं तो जिसमें प्रवेश करता हूं वो स्वतंत्रता का सम्राट गाया हुआ है, क्या नारा है? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। तो मैं जो इसके द्वारा नई दुनिया रचता हूं वहां कोई भी देह का बंधन नहीं होता, और इस दुनिया में होते हैं देह के बंधन, वो है संबंध की दुनिया और ये है बंधनों की दुनिया। तो अभी ये सब देह के धर्म छोड़ दो, अपन को आत्मा समझो, मैं कुमारी हूं, स्त्री हूं, नहीं मैं तो पक्का पक्का आत्मा हूं, परमपिता का बच्चा हूं, ये पक्का निश्चय करना है। ऐसा पक्का निश्चय करेंगे तो बाप की स्थाई याद रहेगी। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है क्या? अगर देह का बहन आया, देह का बहन ज्यादा किसको आता है? स्त्री चोलेधारियों को आता है या पुरुषों को आता है? स्त्री चोले को देह का बहन बहुत आता है, तो खास उनको कहा कि भूल जाओ कि मैं क्या हूं, मैं स्त्री चोलाधारी हूं, नहीं मैं तो आत्मा हूं, और हम आत्मा का बाप आया हुआ है। ये सबक पक्का कर लो, इस सबक पर बहुत विचार सागर मंथन करो, तुमको अभी ज्ञान अमृत मिलता है क्या? जिस समय वाणी बोली गई उस समय ज्ञान अमृत कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकलता है, और उस समय जो भी ब्रह्मा के मुख से बोला उन बातों पर गहराई से कोई ने मंथन किया ही नहीं। मम्मा ने मंथन किया, वो भी बेसिकली मंथन हुआ कि हम आत्मा का बाप ज्योति बिंदु है, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़े आगे। तो बाप कहते हैं ये विचार करना सागर मंथन है। क्या विचार करना? कि मैं अमुक आत्मा हूं, सिर्फ इतना विचार करना मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, ये तो बेसिक नॉलेज है। बाकी गहराई से भी विचार करना है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा कौन सी आत्मा हूं? ज्योति बिंदु तो 500-700 करोड़ सभी कीड़े मकोड़े भी क्या है, ज्योति बिंदु है, लेकिन मैं आत्मा कौन हूं? इस पर जितना गहराई से विचार करेंगे तो अनेक जन्मों का राज खुलता जाएगा। ये मंथन करने से अमृत निकलता है। बाबा कहते हैं रतन निकलते हैं, तो शास्त्रों में लिख दिया है सागर मंथन हुआ तो क्या निकले? रतन निकले। बाप ने समझाया है कि बाप रूप भी है तो बाप बसंत भी है, है? दोनों बातें कैसे? और कौन बाप रूप है और कौन बाप बसंत है? रूप बसंत एक है या रूप बसंत की जोड़ी गाई हुई है? जोड़ी गाई हुई है। वो रूप बसंत बाप ज्ञान की बरसात बरसाते हैं, बाकी और कोई इंद्र नहीं है। कौन है इंद्र? इंद्र माने क्या? इंद्र माना राजा, जो पहले पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर राजा ही करता है। उस इंद्र का काम है विचार सागर मंथन करके ज्ञान की बरसात करना। वो ज्ञान सागर होने के कारण ज्ञान की बरसात करते हैं तुम बच्चों पर। वो एक ही ज्ञान सागर है, नहीं तो मनुष्यों ने तो सागर का भी बंटवारा कर दिया है। कितने सागर बनाए दिए? ये 7 सागर कहां से हो गए? है 7 विधर्मी हैं, तो 7 उनके धर्म पिताएं हैं और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स उनको सागर समझते हैं। तो 7 ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। वो बाप तुम पर ज्ञान की बरसात करते हैं, ये ज्ञान की पढ़ाई है। बाकी कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि जो भी है मैं उनको नहीं जानता हूं, क्योंकि ये सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। कहां से आए हैं ये शास्त्र? कहां से आए हैं? एक मुख से आए या अनेक मुखों से आए? रावण का है मुख से आते हैं शास्त्र, माने भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम के मुख से। एक मुख से आता है ज्ञान और अनेकों मुखों से आता है अज्ञान भक्ति। तो मैं तुमको ज्ञान पढ़ाता हूं, फिर जो भी ये अज्ञान रूपी छोटे छोटे सागर हैं वो सब खलास हो जाते हैं। और धर्म स्थापन करने वालों का शास्त्र रहता है, वो लोग भी कोई खुद शास्त्र थोड़े ही लिखते हैं। उन्होंने जो कुछ बोला उनके फॉलोअर्स ने बहुत वर्षों के बाद लिख दिए, वो शास्त्रों को क्या पढ़ेंगे? जब बहुत हो जाएं तब बात बने। तो यहां पढ़ने वाले बहुत हो जाते हैं, ये बातें तुम बच्चे समझते हो कि इतना कुछ जो विस्तार ज्ञान का होता है, आगे चल के जो टाइम आने वाला है उसमें पढ़ने लिखने और छपाने का टाइम रहेगा? टाइम ही नहीं रहेगा इतने को पढ़ने का। फिर भी कहते हैं ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, कोई भी पढ़ सकता है, बच्चों की बुद्धि में भी बैठ सकता है, बूढ़ों की बुद्धि में भी बैठ सकता है, कोई धर्म वाले की बुद्धि में ये ज्ञान बैठ सकता है। लूले लंगड़े अंधे कोढ़े कानी कुब्जे कोई भी हो इस ज्ञान को साफ सहज रूप से समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।